ये रेडियो नेपाल है। अब सीमा शर्मा से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। जनता में आशा जगाने के हिसाब से सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कम अवधि में ही अर्थतंत्र में सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, प्रधानमंत्री ने किया स्पष्ट। जबरन लापता किए गए लोगों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग, तृतीय संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से हुआ पारित। दो दिनों की लगातार बारिश से कैलाली के 1500 घर है डुबान में, और नेपाल सरकार ने शर्त सहित सामाजिक संजाल टिकटॉक खोलने का किया निर्णय। और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बारिश के कारण दो बच्चों सहित 8 लोगों की हुई मौत। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि जनता में आशा जगाने के हिसाब से सरकार काम कर रही है। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों द्वारा उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि सरकार को कोई गलती करने, भ्रम पैदा करने और इस तरह के काम करने की इजाजत नहीं है जिससे प्रतिफल न मिले। यह कहते हुए कि सरकार बनने के कुछ ही समय में अर्थव्यवस्था में सकारात्मक नतीजे दिखने लगे हैं, प्रधानमंत्री ओली ने बताया कि पिछले साल की तुलना में चालू आर्थिक वर्ष के श्रावण में राजस्व जुटाने और पूंजीगत व्यय में वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों को खत्म करने के लिए अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की नीति कोई मौखिक प्रतिबद्धता या दिखावा नहीं है, बल्कि भ्रष्टाचार नियंत्रण की कानूनी प्रक्रियाओं को अपनाकर इसे खत्म किया जाएगा। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि ऊर्जा, जल स्रोत तथा सिंचाई मंत्रालय ने दीर्घकालीन बिजली व्यापार समझौते के अनुसार भारत को बिजली के निर्यात के लिए ऊर्जा विकास रोड मैप और कार्य योजना 2080 तैयार की है, जिसमें अगले 10 सालों के भीतर नेपाल 10,000 मेगावाट बिजली का निर्यात करेगा। उन्होंने कहा कि कार्य योजना में आर्थिक वर्ष 2091-92 तक करीब 13,500 मेगावाट विद्युत आंतरिक मांग पूर्ति के लिए और करीब 15,000 मेगावाट विद्युत पड़ोसी देश भारत और बांग्लादेश में निर्यात के लिए नेपाल की कुल विद्युत उत्पादन क्षमता 28,500 मेगा पहुंचाने के लक्ष्य के साथ कार्य योजना मंत्रिपरिषद में पेश किया गया है। प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि नेपाल विद्युत प्राधिकरण का डेडिकेट और ट्रंक लाइन का बकाया 1 रुपये भी नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि सरकार और नेपाल विद्युत प्राधिकरण के बीच कोई मतभेद नहीं है। इससे पूर्व प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में सांसदों ने बाढ़, भूस्खलन, डुबान लगायत से हुई क्षति के विषय में सरकार का ध्यानाकर्षण कराया था। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक भाद्र 11 गते मंगलवार दोपहर 1 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा ने जबरन लापता किए गए व्यक्तियों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तृतीय संशोधन विधेयक 2079 सर्वसम्मति से पारित किया है। बैठक में कानून, न्याय तथा संसदीय मामला मंत्री अजय कुमार चौरसिया ने यह प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। इससे पहले विधेयक पर चर्चा में भाग लेते हुए सांसद ने कहा कि राजनीतिक दल बाकी शांति प्रक्रिया को पूरा कर नेपाल को शांतिपूर्ण माहौल में लाने में सफल रहे। इसी तरह राष्ट्रीय सभा ने नेपाल कानून व्यवसायी परिषद द्वितीय संशोधन विधेयक 2081 स्वीकृत किया है। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक भाद्र 9 गते रविवार सवा 1 बजे के लिए बुलाई गई है। परराष्ट्र मंत्री डॉ आरजू राणा देउबा ने कहा है कि भारत की यात्रा ने नेपाल और भारत के बीच आपसी सौहार्द को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत की 4 दिवसीय आधिकारिक यात्रा के बाद त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल पर पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री डॉ राणा ने कहा कि उनका मानना है कि इस यात्रा ने दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोगात्मक बहुआयामी और घनिष्ठ संबंधों को मजबूत करने में योगदान दिया है। मंत्री डॉ राणा ने कहा कि इस यात्रा ने भविष्य में उच्च स्तर और विभिन्न स्तरों पर संपर्क बढ़ाने और द्विपक्षीय संयंत्र के माध्यम से पारस्परिक लाभ के लिए सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मार्गदर्शन मिला है। समाचार रेडियो नेपाल से प्रसारित किए जा रहे हैं। अब कुछ देर विज्ञापन।
हजुर दर्शन,
भाग्यवानी बाबु, राम्ररी आइपुग्नु भयो नि।
हजुर राम्ररी पुगे, ऊ चाहिँ मेरो कलेजको बेस्ट फ्रेन्ड।
नमस्ते बाबुजू।
नमस्ते, आउनु न भित्रै।
हुन्छ बाबुजू।
अनि दादा त अफिस गइसक्नु भयो होला है?
उहाँ त बिहानै हो, हुन्छ तपाईँहरू फ्रेस हुँदै गर्नु न, म खाना तयार गर्दै गर्छु है।
हस् हस् भाउजू।
ओए वाइफाई होला नि, पासवर्ड माग्न।
त पनि एनटिसी को सस्तो डे प्याक छँदैछ नि।
ए हो र,
एनटिसी को डे प्याक लिन *1415# डायल गर्न।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाँकी समाचार। कैलाली में दो दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण करीब 1500 घर डुबान में है। लगातार की बारिश के साथ आई बाढ़ के कारण गौरीगंगा नगरपालिका, कैलारी गांव पालिका, भजनी नगरपालिका क्षेत्रों के 1500 घर परिवार के 4500 जनसंख्या प्रभावित हुए हैं। ये जानकारी जिला प्रशासन कार्यालय के सूचना अधिकारी शिवराज जोशी ने दी। पूर्व राष्ट्रपति डॉ रामवरण यादव ने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में देखे गए वर्गीय विभेद प्रजातांत्रिक समाजवाद के मान्यता के विपरीत है। नेपाली कांग्रेस केंद्रीय पेशागत बुद्धिजीवी विभाग द्वारा समाजवादी चिंतक स्वर्गीय प्रदीप गिरी के दूसरे स्मृति दिवस के अवसर पर आज काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में डॉ यादव ने कहा कि अधिक सामुदायिक विद्यालयों में दरबंदी अनुसार के शिक्षक नहीं होने से माध्यमिक शिक्षा परीक्षा SE का परिणाम कमजोर आता है। कृषि प्रधान देश में 50% खाद्यान्न अन्य देशों से आयात करने की स्थिति भी समाजवाद विपरीत है, इसलिए इसे सरकार रहे निकाय के अधिकारी को सोचना होगा। गृहमंत्री रमेश लेखक ने कहा कि राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन और आर्थिक समृद्धि हासिल करने के लक्ष्य के साथ वर्तमान सरकार गठित हुई है। आज जनकपुर विमानस्थल पर पत्रकारों के साथ बातचीत करते हुए गृहमंत्री लेखक ने कहा कि वर्तमान सरकार द्वारा ली गई लक्ष्य को पूरा करने के लिए राज्य के सभी संयंत्र के साथ ही समाज के सभी वर्गों का सहयोग अपरिहार्य है। मौके पर उन्होंने निकट भविष्य में नेपाल प्रहरी के संगठनात्मक संरचना सुधार संबंधी कानून जारी होने और संगठनात्मक क्षमता बढ़ाकर प्रहरी को और भी व्यावसायिक बनाने की बात बताई। कृषि तथा पशुपंछी विकास मंत्री रामनाथ अधिकारी ने कहा कि नेपाल में रहे स्थानीय तथा रैथाने जात के संवर्धन करते हुए उच्च उत्पादन देने वाले बीज तथा प्रविधि का आयात करके उत्पादन बढ़ाना चाहिए। आज काठमांडू में शुरू हुए अंतर्राष्ट्रीय बीज सम्मेलन को संबोधित करते हुए मंत्री अधिकारी ने कहा कि हवा, पानी और भौगोलिक अवस्थिति के कारण गुणस्तरीय बीज बीजन उत्पादन के लिए नेपाल को उत्कृष्ट गंतव्य के रूप में विकास किया जा सकता है। नेपाल सरकार ने शर्त सहित सामाजिक संजाल टिकटॉक खोलने का निर्णय किया है। आज की मंत्रिपरिषद के बैठक ने टिकटॉक खोलने का निर्णय किया है। ये जानकारी संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री एवं सरकार के प्रवक्ता पृथ्वी सुबा गुरुंग ने दी। सभी सामाजिक संजाल को समान व्यवहार करने और आवश्यक नियम कानून बनाने के लिए बीते श्रावण 24 गते संचार मंत्री, सचिव और नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण के अधिकारी के साथ हुए विचार विमर्श के बाद प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली द्वारा दिए गए निर्देश के आधार पर संचार मंत्रालय ने यह प्रस्ताव तैयार किया था। बता दें कि टिकटॉक के प्रयोग से विकृति बढ़ने की टिप्पणी पर तत्कालीन सरकार ने बीते कार्तिक 27 गते टिकटॉक पर प्रतिबंध लगाया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बारिश के कारण रात भर में 2 बच्चों सहित कम से कम 8 लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने इस बात की जानकारी दी है। प्रांतीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण PDAMA के अधिकारियों ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के डेरा इस्माइल खान, बन्नू, मनसेहरा और मोहम्मद जिलों में लगातार बारिश हो रही है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में बारिश से अब तक मरने वालों की संख्या 215 हो गई है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 26 से 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 27.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.6 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। जनता में आशा जगाने के हिसाब से सरकार काम कर रही है, प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली का कथन। कम अवधि में ही अर्थतंत्र में सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं, प्रधानमंत्री ने किया स्पष्ट। जबरन लापता किए गए लोगों की जांच, सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग तृतीय संशोधन विधेयक राष्ट्रीय सभा से सर्वसम्मति से हुआ पारित। 2 दिनों की लगातार बारिश से कैलाली के 1500 घर है डुबान में। नेपाल सरकार ने शर्त सहित सामाजिक संजाल टिकटॉक खोलने का किया निर्णय और उत्तर पश्चिम पाकिस्तान में बारिश के कारण दो बच्चों सहित 8 लोगों की हुई मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिंदी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभ रात्रि।